मेहंदी और संगीत का फंक्शन खत्म हो गया था। अरुणिमा अपने कमरे में आती है तो उसके कमरे में अंधेरा था। अरुणिमा हैरानी से अपने कमरे को देखते हुए कहती है, मेरे कमरे में इतना अंधेरा क्यों है, मैं तो लाइट ऑन करके गई थी। अरुणिमा अपने हाथ अंधेरे में बढ़ाती है और लाइट का स्विच बोर्ड ढूंढने लगती है। उसे स्विच बोर्ड मिल गया था, पर इससे पहले कि वो स्विच ऑन करती, पूरे कमरे में अपने आप रोशनी हो जाती है। पर ये लाइट की रोशनी नहीं थी, बल्कि ये फेरी लाइट्स की रोशनी थी। पूरे कमरे में फेरी लाइट्स ऐसे जगमगा रही थी जैसे कि छोटे छोटे जुगनू पूरे कमरे में फैले हुए हैं। अरुणिमा हैरानी से अपने कमरे को देख रही थी। उसके पूरे कमरे में वो फेरी लाइट्स बहुत खूबसूरत लग रही थी। अरुणिमा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, तभी कमरे की लाइट ऑन होती है और अरुणिमा देखती है उसकी आंखों के सामने आस्तिक खड़ा है, जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा है। अरुणिमा के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ जाती है, लेकिन फिर उसे अपने गुजरे हुए कल की कुछ तस्वीरें याद आती हैं, जिससे कि उसके चेहरे की मुस्कान फीकी हो जाती है। अरुणिमा की फीकी सी मुस्कान देखकर आस्तिक समझ गया था कि अरुणिमा की मुस्कान क्यों गायब हो गई है। वो अरुणिमा के पास आता है और उसके बालों की लटों को धीरे से सहलाते हुए कहता है, जख्म मैंने दिए हैं तो उन्हें भरने का काम भी तो मेरा ही है। अरुणिमा आस्तिक की आंखों में देखते हुए कहती है, वो जख्म अब नासूर बन गए हैं जिनका अब कोई इलाज नहीं है। मुझे एक मौका तो देकर देखो, क्या पता मेरे प्यार के एहसास तुम्हारे जलते जख्मों पर ठंडक का काम करें। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक को देख रही थी और उसकी बात सुन रही थी। आस्तिक धीरे से अरुणिमा के चेहरे को अपने हाथों में भरता और धीरे से उसके होठों की तरफ आने लगा। अरुणिमा ने एक एहसास के साथ अपनी आंखें बंद कर लीं और वो बस इंतज़ार कर रही थी आस्तिक के प्यार की बारिश का। पर इससे पहले कि वो दोनों अपने प्यार की बरसात में भीगते, दरवाज़ा खुलता है और अनंत अंदर आते हुए कहता है, माँ आपने भाई को कहा? आस्तिक और अरुणिमा एकदम से एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अनजाने की तरह इधर उधर देखने लगते हैं। अनंत जल्दी से पलट जाता है और अपनी आंखों पर हाथ रखते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं देखा, यू गाइज कंटिन्यू। आस्तिक मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक्स माई सन। लेकिन अरुणिमा खींचते हुए आस्तिक को देखती हैं और फिर अनंत से कहती है, क्या मतलब है इसका, हम कुछ कर थोड़ी ना रहे थे, तुम फालतू में कुछ की मत सोचो अनंत। अनंत मुस्कुराते हुए पलटता है और कहता है, माँ मैंने कब कहा कि आप लोग कुछ कर रहे थे, मैं तो बस कह रहा था कि आपने भाई को कहीं देखा है, वो मुझे संगीत के बाद से नजर नहीं आए कहीं पर, वो तो आप खुद ही कह रही हैं। अरुणिमा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं। अनंत मुस्कुराते हुए आस्तिक के पास आता है और उसके कंधे पर बिल्कुल किसी दोस्त की तरह हाथ रखते हुए कहता है, पापा मैंने आप लोगों से कभी ये बात कही नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, मुझे हमेशा से ही ना एक और भाई या बहन की ज़रूरत महसूस होती थी। अब आकाश भाई तो हमेशा से अमेरिका में रहे हैं, वो तो थे नहीं मेरे पास मुझे प्यार करने के लिए, और अमृता यहाँ इतनी दूर रहती थी, ऐसे में मुझे लगता था कि मेरे पास भी एक बहन होनी चाहिए, तो क्या मैं आप लोगों से उम्मीद। अरुणिमा ने बगल में पड़े हुए मैगजीन को उठाया और उसे फोल्ड करते हुए छड़ी की तरह करते हुए वो अनंत के पीछे भागते हुए कहती है, रुक जा अभी तुझे बताती हूँ, बकवास किए जा रहा है। अनंत हंसते हुए दरवाजे से भाग जाता है, लेकिन वो अचानक से दरवाजे से झांकता है और कहता है, मम्मी प्लीज इस बार बहन ही, वैसे भाई भी चलेगा। अरुणिमा की आंखें एकदम से बड़ी हो जाती हैं और वो गुस्से वाले अंदाज में अनंत को देखने लगती है, तो वो वहां से भाग जाता है। लेकिन आस्तिक की हंसी ही नहीं रुक रही थी, उस पूरे कमरे में आस्तिक हंसे जा रहा था। आस्तिक को हंसता हुआ देखकर अरुणिमा गुस्से में उसे घूर कर देखती है और कहती है, तुम हंस क्यों रहे हो, उसके बचपने पर तुम्हें हंसी आ रही है, वो बकवास करके गया है, उसे डांटने के बजाय तुम उस पर हंस रहे हो। आस्तिक हंसते हुए बेड के किनारे पर बैठ जाता है और कहता है, अरे उसके बचपने पर हंसते नहीं रहा हूँ, बल्कि सोच रहा हूँ जो बात मेरा बेटा मुझसे कहकर गया है वो बात मैंने क्यों नहीं सोची, मुझे इस बारे में पहले सोचना चाहिए था, ऐसा होता ना तो शायद आज मेरी भी एक बेटी होती। अरुणिमा गुस्से में आस्तिक के सामने आती है और कहती है, बुढ़ापे में सठिया गए हो क्या, दिमाग खराब हो गया है, ये उम्र है तुम्हारी ये सब सोचने की, दो दो जवान बेटे हैं, उनकी शादी की टेंशन लेने की जगह तुम बच्चे करने की प्लानिंग कर रहे हो। आस्तिक अपनी हंसी को मुस्कुराहट में बदलता है और अरुणिमा का हाथ पकड़कर उसे खींच लेता है। अरुणिमा संभाल नहीं पाती है और सीधे आस्तिक की बाहों में जाकर गिरती है। आस्तिक अरुणिमा की कमर से पकड़कर उसे बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, प्लानिंग तो की नहीं है, लेकिन अगर बात अनंत की इच्छा पूरी करने की है तो मैं तैयार हूँ। जहाँ तक बात रही उम्र की, तो रानी साहिबा तुम कहो तो मैं आज रात तुम्हें ये साबित कर सकता हूँ कि बुढ़ापा अभी मुझ पर चढ़ा नहीं है। अरुणिमा के दिल की धड़कनें बजने लगी, उसने आस्तिक को कंधे से पकड़कर दूर हटाने की कोशिश की और कहने लगी, हटो यहाँ से, जाओ अपने कमरे में, मुझे सोना है, तुम्हारे साथ बात करूंगी तो पता नहीं और क्या क्या बकवास करते रहोगे। लेकिन आस्तिक ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी और उसके सीने पर सर रख दिया। अरुणिमा हैरानी से आस्तिक से कहती है, क्या कर रहे हो? सुकून से सोना है मुझे, इतने सालों तक मैं सोया तो था, लेकिन वो सोना सिर्फ शरीर की थकान दूर करने के लिए था, उसमें सुकून कहीं भी नहीं था। मुझे आज सुकून से सोने दो अरुणिमा, बहुत थक गया हूँ, मुझे सुकून की तलाश है। आस्तिक की बात सुनकर अरुणिमा हैरानी से उसे देखने लगती है। थोड़ी देर तक तो अरुणिमा ने आस्तिक के बाहों से निकलने की कोशिश की, लेकिन जब वो कामयाब नहीं हुई तो उसने स्ट्रगल करना छोड़ दिया और कुछ ही देर में उसे अपने सीने पर आस्तिक की गहरी सांस महसूस होने लगी। वो आस्तिक को देखने लगती है जो किसी छोटे बच्चे की तरह उसके सीने से लिपटकर सो रहा था। आस्तिक को इतना सुकून से सोया हुआ देखकर अरुणिमा के चेहरे पर भी एक सुकून उतर आता है। शायद इतने सालों तक वो भी बेचैनी की रातें गुजार रही थी, आज उसे भी सुकून की जरूरत थी। उसने भी धीरे से अपना हाथ उठाया और आस्तिक के कंधे पर रख दिया। उसने आंखें बंद कर ली और उस जगमगाती हुई रात को वो दोनों एक दूसरे की बाहों में गुजार रहे थे।